भगवान के कृपा पात्रों में उसके प्रसंग में मैं बोल रहा था कि भगवान के कृपा पात्र बहुत हैं। उन पात्रों में से उद्धव को दिखलाया और उद्धव के लिए परमाराध्य ये गोपियां हैं, ये कोई जीव स्त्री नहीं है, कृष्ण ही है। कृष्ण ने अपना ही बायां भागी गोपी बनाया, राधा जी बनाया। इसलिए कोई स्त्री मत गोपियों को समझेंगे और कृष्ण को कोई पुरुष ना समझे। जगत के कल्याण के लिए गोलोक वृंदावन से उतरते हैं, इसलिए उनको अवतार कहा जाता है। वे अवतार ही नहीं, समस्त अवतारों के भी अवतार। क्या लीला करते हैं? प्रेम ही मेरा स्वरूप है, सब लोगों का धर्म या प्रेम ही है, परम प्रयोजन है। प्रेम के बिना जीवन सुना है, इसलिए प्रेम यदि सीखना है तो गोपियों से प्रेम सीखो। उस प्रेम के द्वारा कृष्ण भी वशीभूत, जो स्वयं भगवान ही भी वशीभूत हो जाए। आजकल जगत में शुद्ध प्रेम नहीं है, देखावटी है। कल जैसे मैंने बतलाया था, एक बेश्या मनुष्य को किसी दूसरे युवक को प्यार करती है, वो उस युवक को नहीं रुपये को प्यार करती है। इसलिए इस संसार में शुद्ध प्रेम नहीं है। जब आत्मज्ञान होगा तो उस आत्मा से भगवान को, परमात्मा को जो प्रेम होता है वही यथार्थ प्रेम है। हम लोग भी इसी के लिए आए हैं कि यदि जीवन में सुखी रहना है तो इस प्रेम को प्राप्त करो। और कैसे प्राप्त होगा? गोपियों जैसे करने से ही प्राप्त हो सकता है। अब कल वाले प्रसंग पर हम आते हैं। श्रीमती राधिका जी भाव में विभोर है। उस काले भ्रमर को देख करके कभी क्रोध करती हैं, कभी रोष प्रकाश करती हैं, कृष्ण को बुरा भला कहती हैं, उनको धूर्त लंपट इत्यादि बतलाती हैं। और कृष्ण इसी को सुनने के लिए भ्रमर पूर्ण करके वहाँ पर आए हैं। इसको कहानी खिस्सा मत समझेंगे। वेदों का सार यही प्रेम है, उसको प्रकट रूप में वेदों में नहीं कहा गया। ये वेदों से अतीत श्रीमद् भागवत का विषय प्रेम है। गोपियां भ्रमर ने कहा मानो जंकृत करते हुए, स्वामिनी जी यदि कृष्ण ऐसे ही बुरे हैं और जितने काले ऐसे ही बुरे हैं तो उस काले कृष्ण की ही बातें क्यों करती हैं? उनको भूल जाइए। वो भी आकाश में होती। अरे भ्रमर, यही तो बात है, कृष्ण को बोल सकती हैं, कृष्ण की बात को हम नहीं भूल सकते। देखो एक बार जिसके कान में कृष्ण की बात, कृष्ण का रूप, कृष्ण की कथाएं, उनकी बंसी किसी के कान में यदि चली गई, सखत अधर सुधाम श्वास न, यद अनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रत सकृत दन विद्रोत दंत धर्म विनष्ट सकृत कर। एक बार भी कानों से स्पर्श कर गया उनकी बंसी की घी, आंखों से उनके रूप की झलक आ गई, वो हृदय उसका निकल जाता है, वो कैसा हो जाता है, घर बार छोड़ देता है, घर में रह नहीं सकता। द्वंद धर्म विनष्ट, स्त्री और पति और पत्नी का जो प्रेम है बस खत्म, पुत्र और पिता का जो संबंध वो खत्म, भाई बंधुओं के साथ में उसका जो संबंध है वो सब खत्म, यहाँ तक कि शरीर भी आसक्ति भी समाप्त हो गई। यदि एक बार भूल से भी यदि सुन लिया तो कैसा हो जाता है, घर बार छोड़ देता है, या वो मीरा की भांति सब घर बार को छोड़ देता है। जैसे हम भिखारी नाज हैं, पथ के भिखारी हैं, ऐसे एक दो नहीं हजारों हजारों हैं ऐसे। ये महात्मा लोग जो बैठे हैं इनको वैसे ही समझना, हमारी कथाओं को सुन करके घर के लाडले बेटे थे, अब इनका घर उजड़ गया, माता पिता इनके लिए रोते हैं और ये भी रोते हैं, ये रोते हैं किसके लिए, कृष्ण के लिए। ऐसा ही उसका अर्थ है। देखो इसलिए मैं आप लोगों को भी सावधान करता हूं, कभी वृंदावन में मत जाना, खबरदार। और यदि वृंदावन जाना भी जमुना के किनारे, खबरदार मत जाइए। और फूल से यदि किसी प्रकार से चले गए तो जमुना के तट पर केसी घाट के पास ही गोविंद जी का अद्भुत मंदिर है, और उस मंदिर में बाकी अदा करते हुए वहां पर गोविंद जी खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, यदि दर्शन हो गया फिर लौटना नहीं है। इसलिए यदि आप लोगों को बंधु बांधव स्त्री पुत्र परिवार के साथ में आनंद से आना तो वृंदावन में मत जाना, और गोविंद जी का दर्शन कदापि न करना। और विशेष करके आप लोगों को एक विषय में सावधान करता हूँ, खूब सावधान रहें, जो लोग शीर मुंडन करके लंबी तिलक लगा कर गले में कंठी माला लेकर के और बगल में एक भागवत की पोथ, भागवत नाम की पुस्तक एक बड़ी भारी जालियात पुस्तक है, खबरदार उन लेकर के आए तो उनको स्थान मत देना यहाँ, नहीं तो भागवत की ऐसी कृष्ण की कथाएं सुनाएंगे तुम्हारा चित्त अब तुम्हारा नहीं रह जाएगा। इसलिए उनकी बात, वो संसार में सबसे अधिक खतरनाक है कौन, बगल में जो पोथी दबाए हुए ये लोग जो बैठे हैं इनको बहुत खतरनाक समझना, कहेंगे कि हम पैसा नहीं लेंगे, बिना पैसे की आपको कथा सुनाएंगे, पैसा तो नहीं लेंगे किंतु एक ऐसी चीज ले लेंगे जो आप बावरी और बावरे हो जाएंगे, कृष्ण प्रेम में मतवारे हो जाएंगे। इसलिए बिंदा गोपियां कहती हैं उस काले कनुआ का न मत सुनना, उनकी कथाओं को मत सुनना, एक बार सुनने से आदमी पंछी की भांति हो जाता है, पक्षी की भांति, पक्षी का अपना घर घर नहीं है, रैन बसेरा है, पेड़ों की डालियों में रात भर गुजारते हैं, अपना कुछ नहीं। ऐसे ये कृष्ण का नाम सुन करके, उनकी कथाओं को सुन करके ऐसे मुक्त हो जाते हैं। अब उनका घर बार नहीं, उनका घर बार कहाँ है, घर बार तो छोड़ दिया। ऐसे हजारों वृंदावन में लड़के और लड़कियां, पुरुष और स्त्रियां हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब हो, भूख मर जाएंगे तभी वही रहेंगे। और भगवान ने कुछ व्यवस्था भी कर दी है, छत्र इत्यादि है, लोगों का हृदय बड़ा उदार है, जाते हैं कहते कि आधी रोटी हमको देना, अधिक मत दे, बस माँ बुकरी लेकर के चले, क्योंकि वहां पर सब सदाचारी है, मांस मछली खाने वाले, प्याज लहसुन ग्रहण करने वाले ब्रजवासी नहीं होते। इसलिए हम लोग जाते हैं तो ब्रज के घर में जाकर के माँ बुकरी आधी रोटी, आधी का आधी रोटी मांग करके जीवन निर्वाह करते, वो भगवान के लिए रोते रहते हैं और घर वाले उनके लिए। इसलिए इस विषय में गोपियां कहती हैं कि सावधान रहना, इसके बाद ही कहती अरे भ्रमर, जैसे तू है ना फूलों का रस लेकर और फिर दूसरे फूल पर फूल जाता है, और तू इस प्रकार से गुंजन करता है कि सभी को मुग्ध कर देगा, ऐसे हम क्या जानते थे जी कृष्ण भी तुम्हारे जैसा होगा। कृष्ण को हम लोग पहले पहचान न सके, वो क्या करता है, जैसे वन में कोई ब्याज बांसुरी बजाता है और उस बांसुरी से हिरण खींच करके चले आते हैं, और जब निकट आते हैं तो कोलठिया से प्रहार कर उसे मार डालता है, उसके मांस खाने के लिए। ये प्रभु ऐसे ही है तुम्हारे, बंसी बजाई हम गए हमारे चित्त को हमारे हृदय से निकाल लिया, अब हम बावरी हो गए। कहते कहते याद आया, अरे हमने ना इसको कहा उलाहना दिया किंतु कुछ पूछा नहीं, पूछा नहीं, शायद इसीलिए वो चला गया, थोड़ा सा वो इधर उधर चला गया, कहिए अब शायद चला गया। और वो जाकर के अपने प्रभु काले कृष्ण से कहेगा हम मैं गया और तुम्हारी बहुत उसने निंदा, इतने में देखा जी फिर वो काबू आ गया, ओ तुम मधुपुर से आ गए, बड़े खुशी की बात, हमने तुमसे कुछ कहा बहुत बुरा भला कहा, अब बतलाओ तुम क्या चाहते हो, किस लिए आए, हमारे पैरों में गिर करके अन्याय विनय कर रहे हो किस लिए। ओ मैं समझ गया, तुम्हारा ये कहना है कि प्रभु ने आपको बुलाया है इसलिए आप लोग चले। तो देखो तुम्हारी बात मेरी बात समझो, हम वहां पर जाकर के क्या करेंगे, वहां पर तो हमारे हजारों लाखों सौंपे मिल जाएगी और वे मथुरा में राजा बने हुए हैं, अब तो वो गैया चराते नहीं और हम गोबर पाथने वाली गोपियों से उनका क्या प्रयोजन, हम तो बंचरी हैं गोपियां हैं क्या उनको प्रयोजन, वहां पर तो एक एक से सुंदरियां हैं, हम जाएंगी वो तो राजभवन में रहने वाली वो सब हैं, हम तो वन में घूमने वाली विचरण करने वाली हैं, अतः तो वहाँ जाएंगी तो दुख होगा और उनको भी दुख होगा, इसलिए हमें मत ले चलो। कहो याद आई आर्य पुत्र की अपने गुरुकुल से मथुरा में लौट आए हैं, आह उनको याद आती है ब्रजवासियों की ब्रज भूमि की, जमुना के किनारे जहाँ पर उन्होंने कितनी लीलाएं की, वृंदावन में बंसीपट के नीचे रास लीला किया, गोवर्धन को उठाया, उनके सखा लोगों की याद आती है, और उनके माता पिता को कभी याद करते हैं, हम लोगों को हम लोग कभी स्मरण पथ पर लाते हैं, इस प्रकार से भी लाते हैं और मथुरा की ज्योतियों, तुम लोग जैसा सुंदर माला बनाती है वो तो ऐसा बना नहीं सकते। अथवा ये क्या कहते हैं कि तुम लोग सेज लगाना नहीं जानती जैसे गोपियां करती, तुमको उतना प्यार करना नहीं आता जितना जो किसी भी प्रकार से हमारा स्मरण करते हैं क्या। और ये कहते कहते हा कृष्ण कहते भी कृष्ण कृष्ण कहते भी बस मुच्छित होकर के गुरु। अब उद्धव जी कहते हैं कि हो हमने ऐसा प्रेम तो किसी का नहीं, नंदवा जो सौदा का भी है इतना ऊंचा प्रेम, ये इस परब्रह्म को भगवान को अपना प्रियतम मान करके प्रेम में अपनी सुख बुद्धि को खो देती है, इसका जन्म धन्य है। हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति करने लगे, अहो गोपियां अपने विरह से मुझे आप लोगों ने धन्य कर दिया, विरहेण महाभागा महान अनुग्रह में कृता है। ओ गोपियों आप लोगों ने हमारे ऊपर में बहुत ही अनुग्रह, विरह में भगवान की विरह में कोई ऐसा तड़प सकता है मेरी कल्पना नहीं थी, इसलिए कृष्ण ने भी हम पर अनुग्रह करके यहाँ भेज दिया तुम लोगों के पास में, और तुम्हारा इतना विरह नहीं होता तो कोई जीव भी कल्पना नहीं कर सकता था कि गोपियों का कृष्ण में इतना प्रेम है अगर। ओ अब मैं समझा, इसीलिए कृष्ण सदा मथुरा में रहते हुए रोते हैं कलपते हैं इनकी याद करते हैं और रोते हुए मुझे भेजा, बात यही है। कहते हैं आशाम हो चरण रेणु दिशाम, मैं समझता हूं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। कैसे धन्य हो? आशाम हो चरण रेणु श्याम हम श्याम वृंदावन किमी, यदि वृंदावन में मैं एक पौधा बन जाऊं, एक गुल्म लता बन जाऊं माने छोटा धूप की घास बन जाऊं, जहां गोपियां कृष्ण से मिलने के लिए अभिसार में चलती है और ऊपर अपने चरण की धूली देती है, चरण रज रखती है, अपना जीवन कृतार्थ मानता है। चरण रेण दुषाम हम श्याम वृंदावन कुम फूल औषधीना, या दुष्ट स्वजन स्वजन आर्य पथन चलित्वा भेजे मुकुंद परिणिन सुत भेजे। आज तक सुतियां रूप धारण करके कोटि कोटि वर्ष तपस्या करके भी जिनके चरणों का ध्यान में भी नहीं दर्शन कर पाती, ये श्रुति ब्रह्मा और शंकर की तो बात ही क्या है, नहीं दर्शन कर पाती। और वो कृष्ण गोपियों के की आंखों में काजल के समान है, गोपियां के प्राण की प्राण है। आशाम हो चरण रेण दुषाम हम श्याम वृंदावन कि मैं फूल जल दुष्टजन स्वजन आर्य पथन चलित, गोपियों ने जिनके लिए आर्य पथ को छोड़ दिया मैंने पतियों को छोड़ दिया। लोग भले ही कहते हैं यह दुष्चरित्र हो गई, ठीक है लोक लज्जा माता पिता का आदेश रूपी ये पर्वत की श्रृंखलाओं को भी ये लांग गई, ठुकरा दिया गृहस्थ धर्म सबको ठुकरा दिया जिन कृष्ण के चरणों के लिए, कृष्ण भला उनका ऋणी चुका सकते हैं? कदापि नहीं चुका सकते। जावई सियाचित पदात्मी अजादी आप्त कामई योगेश्वरी सदात्मनिर राष्ट्र गोष्ठम कृष्णस्थ तद भगवत चरणारविंदम नस्तम तनेश भुजहु परिलक्षता। और ब्रह्मा शंकर इत्यादि की आराध्या लक्ष्मी देवी हैं और ये भी कृष्ण को पाने के लिए, उनके चरणों की सेवा के लिए आराधना करती हैं और उनको ब्रज की प्राप्ति नहीं होती। बड़े बड़े योगी लोग भी ध्यान में, जिनका ध्यान करते हैं चरणों का, नहीं आता। और गोपियां क्या करती हैं? साक्षात रूप से उस चरण को, ध्यान में नहीं, साक्षात रूप से अपने मस्तकक्षत तो उनके चरणों को धीरे धीरे रखती हैं। वो हमारा हृदय कठोर है, उनका हृदय कोमल है, इसलिए डरते डरते रखते। कितनी गोपियां सौभाग्यवान, उनके लिए धर्म कर्म सब कुछ जलांजलि दे देती हैं। फिर कहते हैं, वंदे नंद ब्रजेश स्त्री नाम पाद अभिक्त जासम भरो हरि कथा पुनः। गोपियां, उन गोपियों की चरण की धूलि को मैं वंदना करता हूँ। गोपियों की चरण की वंदना करने योग्य में नहीं। वंदे अहम, मैं उद्धव जी कहते हैं, मैं गोपियों की चरण की वंदना कर, ये संभव नहीं। इसलिए उनकी धूलि की वंदना करता हूँ। नहीं नहीं, वो धूलि जिस दिशा में है उस दिशा को भी प्रणाम कर रहे हैं। एक धूलि को, यहाँ पर गोपियों का ये बहुवचन में है प्रयोग, नंद ब्रज स्त्री नाम, ये बहुवचन है ब्रज की स्त्रियों की, किंतु धूलि कणाएं एक बहुवचन है। तत् एक धूलि की, ये किसकी धूलि की वंदना होगी? समझ सकते हैं किसकी होगी? राधा जी की चरण की एक धूलि की वंदना कर। जासम हरि कथोर दीकर, जिन मुख से ये कथाएं निकली हैं श्रीमद् भागवत में लिपिबद्ध किया गया है, व्यास जी ने उसको हृदय में धारण करके उसको अभिव्यक्ति की है श्रीमद् भागवत में। वो अपनी कथाओं से विश्व को पवित्र कर देती हैं। उनका चित्त से विषय के मैल को निकाल कर दूर कर देती हैं, निर्मल कर देती हैं, और तथा प्रेम का संचार करके उसको स्निग्ध बना देती हैं। ऐसी गोपियों की चरणों की एक धूलि को पुनः 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 हमारा नमस्कार। और भी बहुत सी कथाएं हमने संक्षेप में कही। तो यदि समय हो तो आज ही का समय है, अभी आधे घंटे का, इसीलिए बहुत संक्षेप में हम लोगों ने सुनाया। पिछले वर्ष भी शायद उद्धव जी का संवाद कुछ सुनाया था, किंतु आदमी तो भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। उद्धव जी अंत में बोले, गोपियों ये बतलाओ कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं कृष्ण से क्या संवाद ले जाऊं? आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आपकी अभिलाषा क्या है? कृष्ण से कुछ कहूं? कृष्ण ने तो कहा और उसका संदेश मैंने सुनाया, किंतु अब आप लोग बतलाइए कि कोई संदेश कहे, कोई बात है जो इसको कह सके। राधिका जी विरह में तप्त होती हुई बोली, खबरदार, तुमने तीन बार कहा संदेश सुनाने के लिए, किंतु उनसे हमारी बात कुछ मत कहना। जो गोपियां तुम्हारे पीरा में तड़प रही हैं, तो प्राण छोड़ रही हैं। हम लोग तो ये सुना कि कृष्ण के पीरा में तड़प रहे हैं, गोपियों के पीरा में कृष्ण तड़प रहे हैं। तुमने बार बार बतलाया कि आपके पीरा, किंतु यदि कृष्ण सुन लिए तो माखन से भी कोमल, मक्खन से भी कोमल उनका हृदय है, वो धैर्य धारण नहीं करेंगे। इसलिए उनको मत सुनाना, और सुनाना भी तो कैसे सुनाना? जैसे एक पुराना वस्त्र है, उसको साफ किया तो जोर समय ऐंठ करके पानी मत निकालो, क्यों? फट जाए। इसलिए हमारा हृदय, उनका हृदय अब पुराना हो गया, हमारे विरह में हो गया, इसलिए एक साथ में यदि सुनाओगे हमारी बातें तो धैर्य धारण नहीं कर सकते। इसलिए मत सुना और कहना आप जैसे गोपियों को भूल गए हैं, गोपियां आपको अपने मन से निकाल दिया है, आपको तो गाली गलौज कर रही थी, ऐसे कहना, बड़े निष्ठुर हैं, धूर्त हैं, चोर हैं, और आपको वो याद करना नहीं चाहती, ये कहना मुझसे, बतलाओ ऐसी गोपियां कैसे हैं? ऐसा प्रेम जगत में दुर्लभ है। व्यास जी ने कृपा करके इन विषयों को उपलब्धि करके हम लोगों के साथ पास तक ले आए। आजकल बहुत लोग आते हैं हरि कथा सुनाने के लिए, सुनते हैं कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग आए, बड़े बड़े धुरंधर कथावाचक, जो एक साथ में फोन में कितना 10,000 आदमियों को दीक्षा दी और 5 करोड़ रुपए सुनते हैं ये संग्रह करके ले गए। दिया क्या? उन्होंने कहा ये ओ तुमको कौन सा इष्ट देव प्रसन्न है? दुर्गा कहाँ? तो दुर्गा का मंदिर। ओ काली का कहाँ? शंकर जी का कहाँ? जिसको जो प्रसन्न है वही दिया। इससे लाभ क्या होगा? कुछ नहीं। जिसने भजन नहीं किया, अपना इष्ट देव कृष्ण को नहीं बनाया, अपना इष्ट देव कृष्ण को नहीं, राधिका जी को नहीं बनाया, वो क्या दे सकता है? इसलिए उसका प्रभाव नहीं होता। हम लोग ऐसा नहीं करते, सुन करके चित्त का चित्त निर्मल हो गया, कृष्ण को भजन करने की इच्छा है, बस कृष्ण ही का मंत्र दे, कृष्ण को ही दे, दूसरा कुछ नहीं। 1,000 कोई चेष्टा करे तब भी नहीं, वो भी साधन सिद्ध करके। देखो इसका असर कैसे होता है। एक लड़का था, वो बहुत गुड़ खाता था, गुड़ खाने से उसको बहुत से फोड़े हो गए और ठीक ही नहीं होता। तो भक्ति जिसका लड़का था, वो पिता अपने गुरु जी के पास ले गया, कहा जी गुरु जी हमारा लड़का बहुत गुड़ खाता है और उसको फोड़े हो गए, वो ठीक ही नहीं होते हैं, वो खाता रहता है और होता रहता है, आप एक बच्चे को कह दीजिए जब बेटा गुड़ मत खाना है, तो बेटा शायद मान जाएगा। तो बेटे को ले आया तो गुरुजी ने कहा आज नहीं लिखूंगा, 3 दिन के बाद ले गया। तो 3 दिन के बाद ले लिया, 3 दिन के बाद में लाने पर उसने कहा गुरुजी ने, बेटे सिर पर हाथ रख दिया, गुड़ मत खाना, गुड़ खाने से फोड़े तुमसे देखता है ना, तो बीमार और हो जाएगा, इसलिए यदि स्वस्थ होना चाहते हैं तो गुड़ छोड़, कभी कभी पीछे जब ठीक हो जाएगा तब कभी कभी ले। बेटे ने कहा जी अच्छा ठीक है। 4-5 दिन 10 दिन हो गए उसने गुड़ खाया और ठीक हो गए। पिताजी आए गुरुजी के पास, गुरुजी जिस दिन मैं ले गया उस दिन आपने क्यों नहीं कहा जब गुड़ खाना छोड़ दो? 4 दिन के बाद में 5 दिन के बाद में कहा, बेटा बात ऐसी है कि मैं गुड़ खाता था, इसलिए उस समय में यदि कहता तो हमारी बात नहीं मानता। इसलिए जो गुरु भगवान का स्वयं भजन करता है, अनुभूति करता है, वो दूसरे को कृष्ण के को दूसरे के हृदय में दे सकता है, जैसे तैसे वो नहीं दे सकते। तो जिनको कृष्ण से संबंध नहीं, जो कि त्रिपुंड भस्म रमाते हैं यहाँ, या गोल बिंदी लाल बिंदी कर लिए, या वो भी नहीं, जो कहते हैं कि गीता पढ़ने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से स्वास्थ्य अधिक रहता है, ऐसे लोग भला कथावाचक, समाज की सेवा करो, ठीक है, समाज में जो गंदे लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनकी सेवा करने से होगा? तो एक बार की बात है, मुंबई में था, बहुत से संपादक मेरे पास में आए और जैसे यहाँ पर हैं आते हैं और प्रश्न करने लगे। एक ने मुझसे पूछा कि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, साधारण लोगों की सेवा करते हैं, जनता जनार्दन की सेवा करते हैं, तो ये क्या भगवत भजन से कम है? मैंने कहा कि मेरी बात सुनो और तुम ही अपने आप विचार करो कि क्या करना चाहिए। मेरे विचार को केवल सुनो। मैंने कहा आपने 1 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया और उसमें एक एक डिपार्टमेंट के बहुत डॉक्टर रखे, एक्सपर्ट्स, MD इत्यादि रखे, सर्जन रखे और सब लोगों का। तो एक डकैत था, उसने 50 खून किए और अंतिम बार वो पड़ गया किसी के पल्ले, तो घर वालों ने उसे बंदूक से चलाया और उसको कहीं चोट लगी और वो गिर पड़ा और उसके साथी लोग उसे उठा करके लेकर के चले गए और उसी अस्पताल में जो आपने बनाया उसमें भर्ती कर दिया। आप लोगों ने चिकित्सा की, कुछ दिन के बाद में वो ठीक हो गया। ठीक होने के बाद में याद आई इन्होंने हमको बंदूक से मारा। अब अपने 25-30 साथियों को, गैंग को तैयार करके डकैतों का, और सभी लोग रिवाल्वर और क्या क्या लेकर, गैसिंग मन क्या गैसिंग मशीन हो गया, गन मशीन लेकर के पहुंचे, आक्रमण किया, उसके घर वाले सबको मार करके खत्म कर दिया। अच्छा ये जो हुआ उसको भर्ती किया और भर्ती करने के बाद भी उसने ऐसे खून किए, इसका पाप किस पर लगेगा, किस पर लगेगा विचार करो, किस पर है? डॉक्टर लोग कहेंगे हमने तो इलाज इसका किया, हमारे पास जो ही आता है इलाज का, हम लोग कैसे समझेंगे अच्छा हुआ। इन्होंने कहा हम तो लोग उपकार के लिए हॉस्पिटल बनाया, कहने से छूट जाएगा पाप उन पर लगेगा। इसलिए जगत के जितने भी कर्म हैं बुरे और अच्छे मिले हुए हैं, बुराइयां अधिक हैं, इसलिए कर्म मत करो, क्या करो, भगवान की सेवा करो, नहीं तो उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे कर्मों से तुम्हें पीस करके सत्तु बना डालेंगे, याद रखो। इसलिए सब समय कर्म खटिया किस्म का होता है, इसलिए भगवान का भजन किया जाए। यदि कहो ज्ञान, ज्ञान से कुछ नहीं होने को, हमको यह अनुभव है 1 ग्लास पानी पीने से प्यास चली जाए, ये तो हुआ ज्ञान, और आपने पानी पिया नहीं प्यास चली जाएगी उस ज्ञान से? नहीं जाएगी। प्यास कैसे जाएगी? आप जानते हो ना जानते हैं, छोटा सा बालक भी नहीं जानता है, 1 ग्लास पानी पिला दे अपने आप सामने, यह है भक्ति। भक्ति क्रियात्मक है, ज्ञान क्रियात्मक नहीं है, इसलिए ज्ञान के द्वारा नहीं होगा। और भी तुलसीदास जी ने कहा ज्ञान पुरुष है, भक्ति नारी है, इसलिए ज्ञान महिलाओं को देख करके मोहित होकर के क्षुब्ध हो जाएगा, और भक्ति महिला है, महिला को महिला देख करके मुग्ध नहीं होगी जितनी भी सुंदरी कोई हो। इसलिए भक्ति देवी को देख करके वो भक्ति देवी नहीं होती। इसलिए भगवान का भजन करो सहज रूप में और तुम्हारा कल्याण हो, किंतु कैसे साधन करेंगे, साधन कैसे करेंगे, इसके संबंध में अपनी बतलाऊंगा। एक कीर्तन कर दो।
भजने भगवान Thank you.
फिर कथा में लौटिए, बहुत ही सुंदर कीर्तन हुआ। अब इसका साधन क्या है, जैसा हो हम नीचे से चले। यदि कोई व्यक्ति भगवान और भगवान के संबंध में कोई क्रिया है, जैसे वृंदावन जाना, कोई भक्त आ गया, भगवान का यथार्थ भक्त, उसको पानी पिलाना है, भोजन देना है, उसकी सेवा करना है, कई बार भागवत हो रही है, भागवत सुन लिया, अपनी कमाई का कुछ उसमें लगा दिया, तो इससे सुकृति होती है, जो कि माता पिता की सेवा से, संसार की किसी भी क्रिया से नहीं होती, इसको सुकृति कहते हैं। इससे भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा होती है और भक्तों का संग मिलता है और उस संग से हरि कथा मिलती है, फिर भगवान के प्रति, भगवान की कथाओं के प्रति श्रद्धा आती है, वही श्रद्धा जम करके निष्ठा बनती है, निष्ठा से भी रुचि आ जाती है, अब छोड़ने का दिल नहीं चाहता, हरि नाम का कीर्तन श्रवण स्मरण बंधन, और फिर उसी से आसक्ति हो करके भाव होता है, भाव को पीछे कभी आएंगे तब समझाएंगे, और उसके बाद ही प्रेम होता है। प्रेम रहने पर आने के बाद ही में अभी संसार में ये शरीर नहीं रह सकता, प्रेम को यह नहीं सह सकते, इसलिए वो शरीर को छोड़ करके भगवत पार्षद के शरीर में चला जाता है और फिर वहीं से बढ़ते बढ़ते प्रेम स्नेह मान प्रणय होकर के गोपियों का भाव आता है। भगवान की कथाओं को सुन करके यदि किसी को लोभ उत्पन्न हो गया, आज में यशोदा मैया जैसा कृष्ण का लाल बाल, यदि उनको सुख करके लोभ हुआ कि मैं सखाऊं जैसा कृष्ण से प्रेम करूंगा, यदि किसी को सौभाग्यवान जीव को ये लोभ हो गया कि मैं गोपियों जैसा कृष्ण को प्रेम करूंगा, तो इस लोभ होने से जो भक्ति होती है उसको रागानुगा भक्ति का, और जिसको ये सब नहीं हुआ है वो प्रारंभ से गुरु से मंत्र ले, दीक्षा ले, लेकर के गुरु का पदाश्रय करके गुरु की सेवा करें, उनकी बात माने और प्रहलाद महाराज ने जो शिक्षा दी है उसको ग्रहण। प्रहलाद महाराज जी को 5 वर्ष की उम्र में जब पाठशाला से लाया गया तो पिताजी ने पूछा, बेटा तू बहुत सुंदर, बहुत जोरदार गुणी है, बतलाओ तो स्कूल में क्या शिक्षा। उन्होंने कहा मैं तो यही समझा, संसार की अग्नि में सभी लोग जल रहे हैं, इस अग्नि से आसक्ति छोड़ करके साधुओं के संग में भगवान का यदि कोई नाम करे, उनकी कथाओं को सुने तो बहुत सागर को कर जाएगा और उनमें प्रेम हो सकता है। पिताजी उसको बड़े जोर जलाए, गोदी से फेंक दिया, फिर स्कूल में गए ठंडा मर के स्कूल में, फिर 6-7 महीने के बाद में आए, फिर पिताजी ने उनका सिर सुंगा, बड़े सुंदर से उनकी मैया ने सजा दिया प्रहलाद को, पिताजी ने गोदी में बैठा, बोले बेटा अब तो बतलाओ कि तुमने शाम दाम दंड भेद राजनीति इत्यादि कितनी चीजें सीखी। मैंने तो पिताजी ये सब चीजें सीखी नहीं, मैंने क्या सुना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शनम सप्तम आरती। गुरु के चरणों में शरणागत होकर उनसे मंत्र दीक्षा लेकर और फिर गुरु जी की सेवा करते 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 उन्हीं के मुख से या ऐसे वैष्णव के मुख से भगवान का की कथा सुनना, भगवान के नामों का कीर्तन करना, भगवान का अर्चन करना, उनकी वंदना करना, उनके तीर्थों में भगवान की लीला स्थलियों में परिक्रमा करना, ये सब भक्ति नौधा भक्ति है। जो करता है तो धीरे 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 भगवान के प्रति आसक्ति आती है, धीरे धीरे वही बढ़ते बढ़ते प्रेम होकर के ये संसार के बंधन से सदा के लिए छूट सकता है। सुनते हैं पिताजी ने गोदी से फेंक दिया और कहा इसे मार डालो। असुर ने उसे मारने की चेष्टा की, हाथी से कुचलवाया, पर्वतों से ऊपर से फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया, यहाँ तक कि आग में जलाने की चेष्टा की, विष दिया, विषधर सर्प से कटवाए, कुछ नहीं हुआ। जिस पर भगवान की कृपा होती है संसार वाले क्या कर सकते हैं। ऐसा आदमी जो दिन में न मरे रात में न मरे मरे सब देवताओं को भी परास्त कर सकता है, वो व्यक्ति इतना धुरंधर और प्रहलाद महाराज की ये भावना देख करके डर गया, कहीं ये मेरी मृत्यु का कारण न हो गया। फिर गुरु जी का समझा बुझा करके स्कूल में ले गए और एक दिन की बात है गुरु जी कहीं चले गए दोनों और बोल गए कि तुम मॉनिटर के रूप में इन बच्चों को देखना, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। तो गुरु जी चले गए तो बच्चे लोग खेलने लगे। प्रहलाद जी ने कहा आज खेलो मत, आज मेरी कुछ बात सुनो। ये अच्छी बात है, कहो क्या करना चाहते हो। देखो बचपन से ही कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना चाहिए, इस भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन दास्य ये सब करना चाहिए बचपन से ही। बच्चों ने प्रश्न किया, अभी तो हम लोग छोटे बालक हैं, पढ़े लिखे नहीं, विवाह शादी नहीं किया, अब बचपन से कर रहे हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे उसमें हम भगवान का नाम करेंगे कीर्तन करेंगे उनकी बात। अभी तो हम लोग धन उपार्जन करेंगे ना और जगत के सुखों को खोएंगे, सुंदरी लड़की से शादी करेंगे, सुंदर पुरुषों से शादी करेंगे। अभी तो हम लोग चाहते हैं कि ये इन सबको शिक्षा प्राप्त करके ये करें। देखो मनुष्य जन्म इसके लिए नहीं मिला, पुरुष और स्त्री का जन्म इसके लिए नहीं मिला। कब मर जाएंगे कोई गारंटी है? 2 वर्ष के बाद में, 3 वर्ष, 4 वर्ष के बाद में, 10 वर्ष के बाद में, 1000 वर्ष के बाद में मरना तो जरूर है, किंतु कब मरेंगे ये तो केवल परीक्षित जी को 7 दिन रहने का आश्वासन मिला था, बाकी हम लोग कभी नहीं कह सकते जी हम लोग कल जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। इसलिए किसी की यदि युवावस्था ही नहीं आए उसके पहले मर जाए तो क्या होगा, इसलिए बचपन से करो। देखो एक बात समझो, जिस प्रकार से कोई दुख नहीं चाहता, कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई मरना नहीं चाहता, कोई रोग नहीं चाहता, किंतु बिना बुलाए ये आ जाते हैं कि नहीं दूर आ जाते हैं, भुगा लेते हैं, चाहे रो करके भोग करो या हंसते हुए भोग करो, दुख भोगना पड़ेगा, बिना बुलाए आता। ऐसे ही यदि तुमने सुख का कर्म किया है तो तुम उस सुख के लिए परिश्रम नहीं करने का, सुख भी तुम्हारे घर में आएगा, छप्पड़ फाड़ करके खुदा दे देगा। जैसे दुख आता है वैसे सुख भी आएगा। आप कोई 1000 सिर पटके सुख के लिए, सुख नहीं है तो कहाँ से आएगा, और दुख को दुख करने के लिए चेष्टा करेगा, नहीं तुमने ऐसा कर्म किया तो कहाँ से आएगा। इसलिए तुम लोग इसकी चिंता मत करो, तुम लोग केवल सुक्ति की चिंता मत करो, भगवान की का भजन करो, इससे तुम्हारे सारे मनोरथ दूर जाएंगे, सारे रूप में दुख कष्ट भी चले जाएंगे, तुम्हारा जीवन सदा के लिए सुखी हो जाएगा। पहले गुरु का पदाश्रय करो और पदाश्रय करके उनसे समझो इन चीजों को और फिर भजन में लगो। देखो एक आदमी की आयु मान लिया कि 100 वर्ष की है, मान लो आजकल 100 वर्ष नहीं है, फिर भी मान लिया कि 100 वर्ष, सतयुग में 10,000, 20,000, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है और आदमी उतने लंबे चौड़े होते हैं। आजकल आयु घट गई है, द्वापर में इससे भी अधिक थी, त्रेता में भी इससे अधिक थी, अब 100 आयु के रूप में, औसत के रूप में आया। इसमें अजितेंद्रिय व्यक्ति अर्थात जो सिगरेट पीते हैं, पान तंबू और उसका मसाला खाते हैं, शराब पीते हैं, गंदी चीज़ों को मांस इत्यादि खाते हैं, जो अपने जिनका अपने कंट्रोल अपने इंद्रियों पर नहीं है, उनकी तो आयु तो आधा तो ऐसे ही मर गए। और यदि ठीक भी हैं तो सोने का समय आधा होता है, दिन में जगते हैं रात में, दिन में जगते हैं रात में सोते हैं, तो आयु का यह आधा भाग 50 वर्ष तो ही हो गया सोने में, समझो अच्छी तरह से। कुमार अवस्था से लेकर के 20 वर्ष 25 वर्ष की उम्र तक हम लिखना पढ़ना खेलना किसी विषय में एक्सपर्ट होना, ग्रेजुएशन करना, फिर डॉक्टर इंजीनियर वकील बैरिस्टर इत्यादि की योग्यता हासिल करने में घर का पैसा लगा करके भी उसमें लगता है। ये ऐसा ही गया 25 वर्ष। और उधर में 80 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र जट वृद्ध हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, कभी कोमा में रहते हैं, कभी कुछ लकड़ी लेकर के चलते हैं, कुछ कर नहीं सकते, सीधे बैठ करके ऐसे खड़े भी बैठ भी नहीं सकते, तो क्या भगवान का भजन करेंगे। और उस समय लड़का लड़कियों का आता ना, ये बूढ़ा खांसता रहता है, मर के नहीं जाता, जिन बच्चों को जन्म दिया वही कहेंगे, और तो एक कुछ धन है बूढ़े हो गए बंद अभी रुपया दे दो भला चाहो, और ऐसे सीने पर लगा देंगे, सब कुछ ले लो, याद रखो ये सब चीज है। तो ये उधर का 20 इधर का 20 40 और ये 50 90 वर्ष भी। अब 10 वर्ष का जो समय है वो किस में गया, घर बनाने में, गाड़ी लेने में, गाड़ी लिया नहीं, यदि कार नहीं लिया तो जीवन वृथा है। और घर में यदि टीवी नहीं है तो टीवी क्या है, कैंसर, बच्चों का चरित्र नष्ट करता है, लोगों का समय बर्बाद करता है, ये टीवी रोग है। टीवी नहीं है तो कोई चीज बेच करके भी लाओ, विशेष करके लड़के लड़कियां मांगे नहीं, वो तो टीवी देखकर देखते ही रहे, पढ़ना लिखना छोड़ करके, और देखेंगे क्या, एक लड़की के पीछे 4-5 युवक दौड़ रहे हैं और परस्पर बंदूक से मारते हैं एक के लिए, तो ये सब देख करके लड़का कैसा निकलेगा, लड़का कैसी निकलेगी। यह है टीवी, जरूर चाहिए। तो इसी सब देखने में फिर विवाह करके भरण पोषण करने में, बच्चों को शिक्षित करने में, योग्य बनाने में, ये 10 वर्ष कब निकल गया कुछ पता नहीं। भगवान का भजन कब करेगा, इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे बंधुओं, बेटा और बेटी, बचपन से ही भजन आरंभ करो। जब बचपन में नहीं हुआ तो जब से ये सुना तभी से करो, आज से ही, आज करो सो अब कर, अब करो सो कल करो सो आज कर, आज करो सो अब पल में परलय होएगी बहुत करो। और हम क्या कहते हैं यहाँ जगत के लोग, आज करो सो कल करो, कल करो सो परसो, क्या खटखट में पड़े हुए हो, समय पड़ा है कल अगर कर लो, मत सोचो, कमर में सीधी नहीं होगी तो क्या भजन करेगा, उसमें ध्यान होगा ना भगवान का नाम होगा, तो सब समय रोएंगे कि बेटों ने हमको पूछा नहीं, हमारी बहू आई हमको घर से निकाल रही, बस इसी में चिंतन नहीं जाता। इसलिए जल्दी से जल्दी सद्गुरु पदाश्रय करके भगवान का भजन आरम्भ कर दो। भगवान का भजन करना खूब कठिन है नहीं, गोपियां क्या करती हैं, घर में मंथन करती हैं, और करती क्या है, कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करते हैं, गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर क्या करती हैं, झाड़ू देती हैं।
गोविंद नाम
पल्ला ढूंढ रहा है और कर
गोविंद गोविंद।
बच्चे को पल्ला में झुला रही है, नींद नहीं उसको आ रही है, थप थपी देकर के बेटा सो जाओ सो जाओ, तो वो नहीं कहती
गोविंद
का कोई जगह ही नहीं, मार्बल के घर पे नहीं है। आता उसको पूछना तो है तो घर उसको पूछते ही लेकर
गोविंद
घर के सभी कामों को कर सकते हैं। पुरुष लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जा रहे हैं ऑफिस, अंट संट की बातों को चिंता करके जाते हैं। अरे अंटसंट की बात क्या है, जाओ ऑफिस
गोविंद
को, इसमें बहुत पैसा खर्च हो गया है। पैसा खर्च होगा, एक कान्या कौड़ी भी खर्च होने की जरूरत नहीं है, किसी को लेने देने में तो हो जाएगा, किंतु भगवान के नाम का, मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ कुछ हूँ, कोई भी इसमें साथ, बाल बच्चे वृद्ध एक साथ में, एक फैमिली के सभी लोग मिल करके एक साथ बैठ जाओ, मृदंग करताल की भी जरूरत नहीं है, ताली तो भगवान ने दी है।
गोविंद
बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे, इसलिए मेरी राय में तो राधे राधे करना सबसे अच्छी बात है। किंतु वो उनको भी मन खोलो जो कृष्ण राधा जी के यत्न, हमारी स्वामिनी तो राधा जी, इस प्रकार से करते हुए अपना जीवन बिताओ। याद रखो भूलो मत इसको, हम चले जाने पर भी इन बातों को याद करते, अपने घर में भी हो, यहाँ भक्त लोग बुलाएं वहाँ जाकर के और ऐसा भजन करें। यदि भगवान की इच्छा हुई ये लोग चेष्टा कर रहे हैं, यदि कहीं पर एक भूखंड मिल गया, जमीन मिल गई, तो हम लोग भी एक छप्पर की कुटिया डाल देंगे, भले ही मंदिर नहीं हो, भले ही मंदिर का हो, 300 वर्ग गज लंबा चौड़ा का, जिसमें कि 1000 आदमी सहजी आ सके, ऐसी कुटी निर्माण बना दिया जाएगा, जिसमें इतने लोग हरि कथा सुने, कीर्तन करें, नृत्य करें, कश्मीर पे किसी तरह से शांति आ जाएगी। उन जो आतंकवाद हैं वो लोग भी आए सुने, उनका कथन आप लोग सर्वे सुखिना भवन्तु, सर्वे निरामया, यही मेरा आशीर्वाद है, भगवान का करें। आज मैं यहीं पर अपना अपनी कथा का विराम हम लोग देते हैं, किंतु आप लोग याद करें, अगले वर्ष यदि ये लोग बुलाएं आग्रह होगा तो फिर यदि मैं स्वस्थ रहा तो फिर आऊँगा, नहीं तो ये लोग सब
जय जय श्री राम।